समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और आज की जो तारीख है वो भारतीय इतिहास के कैलेंडर पर किसी स्याही से नहीं बल्कि हमारे देश के लोगों के खून से लिखी गई है। जी हां, आज जलियांवाला बाग नरसंहार स्मृति दिवस है। और कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सुभद्रा कुमारी चौहान की ये दो पंक्तियां पढ़कर शुरुआत करूंगी। परिमल हीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। ओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहां मत शोर मचाना। और आज के इस दिन को हम डेटलाइन में याद करेंगे कि इस तरह से क्या क्या हुआ था उस शाम को। और इसके अलावा आपको बताएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल की भी देंगे आपको जानकारी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार जागृति। यस जागृति, यू राइटली सेड टुडे वाज द डेट 13th April, but the year 1919, when Amritsar went through a defining moment in India's freedom struggle, where British troops under General Dyer fired on a peaceful, unarmed gathering, killing hundreds. The brutality intensified the Indian independence movement, leading Mahatma Gandhi to launch the non-cooperation movement and Rabindranath Tagore to renounce his knighthood. Today, the site serves as a national memorial, honoring the victims, their courage, who died resisting colonial oppression. The nation pays tribute to the martyrs who continue to inspire the nation's fight for liberty and justice. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have also paid homage to these martyrs. The nation will always remember them with great pride and respect. We will continue with this in our Dateline section, as Jagriti also mentioned that. But first, let's begin with what's making news at this hour.
Ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत के 21वीं सदी के निर्णायक सुधार के समर्थन का आह्वान किया। विशेष संसद सत्र से पहले नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित किया।
इलेक्शन कैंपेन इंटेंसिफाइज इन वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु एज टॉप लीडर्स ऑफ वेरियस पार्टीज होल्ड रैलीज एंड रोड शोज टू वू द वोटर्स।
अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाह की नाकेबंदी की घोषणा के बाद तेल की कीमत प्रति बैरल $100 के पार।
Sensex tumbles around 1.2% while Nifty declined nearly 290 points as West Asia crisis deepens.
सुविख्यात पार्श्व गायिका आशा भोसले का अंतिम संस्कार आज मुंबई में।
And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Rajasthan Royals at Hyderabad this evening. And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And of course, as we said today, we will talk about Jallianwala Bagh massacre.
जी, आज की तारीख भारतीय इतिहास के कैलेंडर पर किसी स्याही से नहीं बल्कि हमारे ही अपने देश के लोगों के खून से लिखी गई है। आज जो वैसाखी का दिन, जिसे लोग बड़े ही उत्साह और खुशी से मनाते हैं, उसी को मनाने के लिए जब लोग इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग में, तो वो खौफनाक मंजर बन गया, एक इतना बड़ा हत्याकांड बना कि आज भी जब उसे याद करते हैं तो सिहरन सी अपने शरीर में होने लगती है। आज जलियांवाला बाग नरसंहार स्मृति दिवस है। आज से ठीक 107 साल पहले अमृतसर के उस बाग में जो भी कुछ हुआ उसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। ये दिन उन सैकड़ों मासूमों की शहादत को नमन करने का है जिन्होंने देश की आजादी के सपने को सच करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उस खौफनाक मंजर ने पूरे देश को रुलाया। आइए जानते हैं उस काली शाम की पूरी कहानी जो आज भी हर हिंदुस्तानी के रोंगटे खड़े कर देती है।
Today we take you back to 13th April 1919, a day etched forever in the memory of India. A day when hope turned into horror, when a peaceful gathering became a massacre, when the soul of a nation was shaken. This is the story of the Jallianwala Bagh massacre. It was the festival of Baisakhi in Amritsar, Punjab, a time of joy, harvest and celebration. Thousands of people, farmers, traders, families had gathered at Jallianwala Bagh, a walled garden surrounded by buildings with only one narrow entrance. But this was not just a festive gathering. There was unrest in the air. The British government had recently passed the controversial Rowlatt Act, allowing them to arrest Indians without trial. Protests erupted across the country. Two respected leaders, Saifuddin Kichlu and Satyapal, had been arrested, angering the public even more. That afternoon, people gathered not only to celebrate, but also to peacefully protest. They had no idea what was coming.
जी, और लगभग शाम 5 बजे ब्रिगेडियर जनरल डायर हथियारों से लैस सैनिकों, ब्रिटिश भारतीय सेना के गोरखा और सिख सैनिकों के साथ बाग में दाखिल हुए। बिना कोई चेतावनी दिए, बिना भीड़ को तितर बितर होने के लिए कहे, उन्होंने बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद कर दिया था और फिर डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। निहत्थे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर गोलियों की बौछार हो गई। लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जाने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। कुछ लोग भगदड़ में कुचल गए, कुछ अन्य लोग गोलियों से बचने के लिए बाग के अंदर मौजूद एक गहरे कुएं में कूद गए। गोलीबारी जारी रही लगभग 10 मिनट तक। 1600 से ज्यादा गोलियां चलाई गईं और उसके बाद पूरे बाग में सन्नाटा छा गया।
Official British records claimed around 379 deaths. Indian estimates put the number at over 1,000. More than 1,200 people were injured, many left without medical help. The ground of Jallianwala Bagh was soaked in blood. But the tragedy did not end there. What shocked people even more was the lack of remorse. General Dyer later stated that his intention was not just to disperse the crowd, but to teach them a lesson.
पूरे भारत में आक्रोश जंगल की तरह फैल गया। नेता, विचारक और आम नागरिक, सारे लोग हक्के बक्के रह गए। महात्मा गांधी, जो अब तक अंग्रेजों के साथ शांतिपूर्ण सहयोग की वकालत कर रहे थे, उनका अंग्रेजों की नीयत से विश्वास हट गया। ये घटना उनके नेतृत्व में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। जल्द ही उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया और भारतीयों से ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने का आह्वान किया।
Even in Britain, the massacre sparked debate. Winston Churchill, then Secretary of State for War, condemned the act as unutterably monstrous. In the British Parliament, Dyer's actions were criticized, but many still supported him. This divided response only deepened the wounds of India. An inquiry was conducted, but it failed to deliver true justice. No serious punishment was given. And to many Indians, this confirmed a painful truth. Their lives did not matter under colonial rule. But from this tragedy rose a stronger determination. The massacre united Indians like never before. Moderates and extremists came together. Hindus, Muslims, Sikhs stood side by side. The dream of freedom became unstoppable.
हम भूलेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। आजादी हमारा अधिकार है। जलियांवाला बाग की गूंज भारत के हर कोने तक पहुंची। इसने क्रांतिकारियों को प्रेरित किया, नेताओं को मजबूत बनाया और लाखों लोगों को जगाया। ये भारत में ब्रिटिश सत्ता के नैतिक अधिकार के अंत की शुरुआत थी। आज जलियांवाला बाग एक स्मारक के रूप में खड़ा है, एक ऐसी जगह जहां शांति है, चिंतन है और यादें हैं। दीवारों पर गोलियों के निशान, शहीदों का कुआं आज भी वो ही कहानी सुनाते हैं, दर्द की कहानी, लेकिन साथ ही हिम्मत की भी।
And as we remember this day, we must ask ourselves, what does freedom mean to us today? What lessons do we carry forward? Let us honor those who lost their lives by preserving the values they unknowingly fought for: justice, unity and humanity, because history is not just about the past, it is a guide for the future.
On the 13th of April 1919, one of the most brutal episodes of Indian freedom struggle, the Jallianwala Bagh massacre, took place. The incident marked a turning point in India's struggle for independence.
The Rowlatt Act was passed on 10th of March 1919, authorizing the government to imprison or confine without a trial any person associated with nationalistic activities. This led to nationwide unrest. This act was termed as Black Act by nationalist leaders. Mahatma Gandhi initiated Satyagraha to protest against the Rowlatt Act and published an article called Satyagrahi on 7th of April 1919, describing ways to oppose the Rowlatt Act.
The British government issued orders to prohibit Gandhiji from entering Punjab and to arrest him if he disobeyed the orders. Dr. Saifuddin Kijlu and Dr. Satyapal, the two prominent leaders who were a symbol of Hindu-Muslim unity, organized a peaceful protest against the Rowlatt Act in Amritsar. When the two leaders were arrested on April the 9th, 1919, the people marched to the deputy commissioner's residence the next day to demand their release. They were fired upon by the police and many people were injured. The Lieutenant Governor of Punjab, Michael O'Dwyer, directed the officers to suppress all opposition.
13th of April 1919, on the day of Baisakhi, people had gathered at Jallianwala Bagh to celebrate Baisakhi, in spite of the orders prohibiting any assembly. At the meeting, two resolutions were to be discussed. One, condemning the firing on April the 10th, and the other requesting the authorities to release their leaders. When the news reached the police, the tyrant Brigadier General Reginald Dyer headed to the Bagh with his troops. He entered the Bagh, deployed his troops and ordered them to open fire without giving any warning.
People rushed to the exits, but Dyer directed his soldiers to fire at the exit. The indiscriminate firing continued for 10 to 15 minutes and it ceased only after the ammunition had run out. Over 1,650 rounds were fired.
The total estimated figure of the dead as given by General Dyer was 291. However, other reports, including that of a committee headed by Madan Mohan Malviya, put the figure of dead at over 500.
As the news of the massacre spread across the nation, Gurudev Rabindranath Tagore renounced his knighthood.
General Dyer's actions on the day of the massacre received a prompt acknowledgement from the Lieutenant Governor of Punjab, Michael O'Dwyer, who at once wired to him,
"Your action is correct. Lieutenant Governor approves."
Both the British officers, Reginald Dyer and Michael O'Dwyer, faced violent criticism. On 14th of October 1919, the Disorders Inquiry Committee, also known as the Hunter Commission, was formed to inquire about the massacre. The commission only censured Dyer for his actions and asked him to resign from his appointment as brigade commander.
But the fire of revenge was alive in Indian revolutionaries. The barbaric Brigadier General Reginald Dyer died in 1927 due to a stroke. But the then Lieutenant Governor of Punjab, Michael O'Dwyer, had to face the wrath when 21 years after the Jallianwala Bagh massacre, Michael O'Dwyer was shot by the revolutionary freedom fighter Udham Singh on the 13th of March 1940 in London.
After independence, a memorial was set up by the Government of India in 1951 at Jallianwala Bagh to commemorate the spirit of Indian revolutionaries and the people who lost their lives in the brutal massacre. It stands as a symbol of struggle and sacrifice and continues to instill patriotism amongst the youth. In March 2019, the Yaad-e Jallian Museum was inaugurated, showing the account of the massacre.
और आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारत के महापंजीयक कार्यालय के उप महानिदेशक बिस्वजीत दास के साथ जनगणना 2027 स्वगणना कैसे करें विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। तो सभी श्रोता इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। और अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानते हैं कि उनके पास क्या विशेष है।
And to begin with, the National Level Conference on Nari Shakti Vandan was organized in New Delhi today to reinforce the government's commitment towards greater participation of women in shaping country's development trajectory. The program highlighted the increasing role of women in governance and leadership across all levels, from panchayats to parliament. Women achievers from diverse fields attended the event, along with representatives from different sectors such as government, academia, science, sports, entrepreneurship, media, social work and culture. Talking exclusively to Akashvani News, Women and Child Development Minister Annapurna Devi said that Nari Shakti Vandan Act is an exceptionally bold and transformative step. She said that with this decision, women will now be at the core of decision making.
Nari Shakti Vandan Adhiniyam hamari matri shakti ke varshon ke sangharsh aur sadhana ki loktantrik siddhi ka mahaparv hai. यह महिलाओं के आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला युगांतरकारी परिवर्तन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें यह दृष्टि दी है जिससे आज भारत की बेटियां विकास रथ की ध्वजवाहक बन रही हैं और आपके वुमेन लेड डेवलपमेंट के विजन के साथ विश्व पटल पर अपनी नई पहचान स्थापित कर रही है।
The chairperson of the National Commission of Women, Vijaya K. Rahatkar, also talked to Akashvani News saying, this is a huge and historic step and it will put women at the center of decision making. She said that Prime Minister Narendra Modi is committed to women empowerment.
और पूर्व भारतीय पैरालंपियन और खेल रत्न पुरस्कार विजेता दीपा मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को गरिमा और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए सीधे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से जोड़ना है। उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया कि वे इस अवसर को पहचानें और देश के भविष्य को संवारने में सक्रिय रूप से भाग लें।
Former Lok Sabha Speaker Meera Kumar said that the presence of women in decision-making roles is not only crucial for the country, but for the progress of human civilization as a whole. She also highlighted that during her tenure as a speaker, she convened multiple all-party meetings to build consensus on the bill, urging political leaders to support its passage.
अभिनेत्री और कथक नृत्यांगना प्राची शाह ने इस अधिनियम के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि ये देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लोकसभा सांसद कमलजीत सहरावत ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये देश के लिए एक स्वर्णिम क्षण है।
Moving on with the demise of legendary singer Asha Bhosle, a golden chapter of Indian music has come to an end. Asha Tai, who carved a niche in the music industry with her rich and versatile singing, is being given her final farewell in Mumbai today. Among her many remarkable qualities was her illustrious career spanning over 8 decades, along with her ability to constantly experiment and excel in new styles. Let us listen in for more from our Mumbai correspondent.
Although Asha Tai is widely associated with Hindi film music, her talent is equally evident in countless non-film songs, albums and ghazals. A fine example of her ability to capture the pulse of changing times and elevate it with her voice is the album Naina Lagai Ke, created in collaboration with renowned sitar maestro Ustad Shujaat Khan. Based on traditional Hindustani classical music and composed in a semi-classical style, the songs in this album feature vocals by Asha Tai, who, then in her 70s, sounds as fresh and enchanting as ever, alongside the evocative sitar of Ustad Shujaat Khan. Sharing with us his experience of working on this album, as well as fond memories of Asha Tai, especially her love for food and hospitality, is none other than Ustad Shujaat Khan himself.
I am probably one of the last people who collaborated with her in music. Naina Lagai Ke, we toured with it in England and performed together. stayed together. And not only that, but I spent so much time with her in my younger days. Her and RD Saab used to sit all night, baithe baithe unki baatein, unka gaana sunte rehte the. Aur insaniyat bhi kamal ki thi unme. There's a, I remember once we were all together in a studio and she saw us eating hotel food or restaurant food. So from then till our project was over, she used to cook meat at home and bring it to the studio every time she came. So there was a wonderful humanness about her also. And kya hi awaz aur kya hi awaz, and we will all miss her. The whole world, I mean, for me it's a personal loss, but everyone will understand what a great person has gone away from amongst us.
Though we will all miss Ashatai's lively presence among us, her timeless music will continue to enrich, inspire and spellbind many for generations to come. For Parikrama, this is Ankita Apte from Mumbai.
बिल्कुल, उनकी आवाज में हम उन्हें याद रखेंगे और उन्हें याद करने के लिए और अंतिम दर्शन के लिए इस समय लोग मुंबई के शिवाजी पार्क में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पणजी की ओर। मोर गुआव पोर्ट अथॉरिटी ने भारत के समुद्री क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में इस पोर्ट ने सभी 12 प्रमुख बंदरगाहों के बीच सबसे अधिक विकास दर दर्ज की और 21.01 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का प्रबंधन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16% की वृद्धि है और पिछले 5 वर्षों में इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। एक रिपोर्ट।
The growth was driven by strong gains in dry bulk, fertilizers and miscellaneous cargo, alongside steady increases in iron ore and liquid cargo. On the financial front, the port reported an operating income of 583 crore, also a 5-year high. Key infrastructure projects, including a solar power plant, upgraded railway lines and enhanced firefighting systems, have boosted efficiency and sustainability. The Marmora Port Authority's performance highlights its focus on modernization and diversification, reinforcing Goa's role in India's maritime growth story. For Parikrama, Mahesh Sopade, Panji.
And moving on to Kozhikode now, where Kerala increasing its vote percentage in assembly elections in this time's elections. So we have more on this from our correspondent.
With the conclusion of the voting for the assembly elections in Kerala, the friends and candidates are busy calculating and deducting the seats they can get. Discussions related to the voting percentage released by the election commission are active in the media. The state level committees of the parties and friends are examining the information prepared by the subordinate committees after compiling the information of the likely votes polled in each assembly constituency. The assembly election in Kerala was fought between the LDF, which aimed for a third term, the UDF, which raised anti-incumbency sentiments, and the NDA, which made the new regime and Prime Minister Narendra Modi's development concept its campaign theme. The highest voter turnout in the state was recorded in the assembly elections in recent times, 78.27%. The final figure has not been published by the Election Commission yet. The highest voter turnout in the state was recorded in 1987, which was 80.54%. The Election Commission had set a target of 85% this time. The Commission organized many activities to make people aware of the importance of voting rights so the new generation of voters reach the polling booth. This is the reason for the increase in the voting percentage in Kerala in general. The distribution of Kozhikode Halwa to the maiden voters by the officials was considered as a voter's sweetness. The implementation of home voting for the differently abled and those above 85 years of age was also noteworthy. It is assessed that the increase in the voting percentage in Kerala is due to the fact that the Election Commission planned many such programs to exercise the right to vote. In general, the election activities in the state were peaceful. It can be said without a doubt that public participation in the election process in the respect duty and responsibility that the people have for our democratic system. Therefore, the activities of the Election Commission this time will become a model for future election procedures. Suresh VK for Parikrama, Akashavani News, Kozhikode.
और और अब खेल के मैदान से आईपीएल की खबर। आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा।
And coming to the business news, benchmark domestic equity indices dropped nearly 1% today. The Sensex fell 703 points to close at 76,848, while the Nifty slipped 208 points to settle at 23,843.
और अब याद करते हैं उन महान व्यक्तित्वों को जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। सबसे पहले बात करते हैं प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार और व्यंग्यकार बाबू गुलाब राय की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। सरल साहित्य के पक्षधर बाबू गुलाब राय ने हिंदी भाषा को जन जन की भाषा बनाने के प्रयास किए। उन्होंने दार्शनिक और साहित्यिक कृतियों की रचना की। उनकी दार्शनिक रचनाएं उनके गंभीर अध्ययन और चिंतन का परिणाम है। आधुनिक काल के निबंध लेखकों और आलोचकों में बाबू गुलाब राय का स्थान बहुत ऊंचा है।
And we also pay tribute to Balraj Sahni. Born Yudhishthir Sahni, he was a towering figure in Indian cinema, celebrated for his unparalleled realistic acting, social conscience and portrayal of the common man. A master of method acting, he brought immense empathy to iconic roles in Do Bigha Zameen, Kabuliwala and Garam Hawa. A talented writer and intellectual, Sahni left an enduring legacy. One can never forget how he even lived up with the slum dwellers in Bombay and the rickshaw pullers in Calcutta to infuse realism to his movie Do Bigha Zameen. His creativity reached poetic proportions. No actor placed so much effort in living the very life of the character he played. We have a song from the movie Do Bigha Zameen.
मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए,
मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए,
मौसम बीता जाए।
बलराज साहनी को रंगमंच और फिल्म दोनों ही माध्यमों में समान रूप से दिलचस्पी थी और अपने सशक्त अभिनय से वो दर्शकों को पर्दे के पात्र से भावनात्मक रूप से जोड़ देते थे। और आज ही हम याद कर रहे हैं भारत में पैथोलॉजी और चिकित्सा अनुसंधान के पिता माने जाने वाले वसंत रामजी खानोलकर को, उनकी जयंती पर। उन्होंने कैंसर, रक्त समूहों और कुष्ठ रोग की महामारी के इलाज खोजने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
And moving on, we also pay tribute to Verma Malik on his birth anniversary today. He was a lyricist. He was an active freedom fighter during the British Raj, and he wrote many patriotic songs and bhajans and recited them immediately prior to penning lyrics for Punjabi and Hindi films. His first big break in Hindi language films was in the movie Yadgar by Manoj Kumar, and he is known for writing the songs like Ik Tara Bole.
Ik Tara Bole. सुन सुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन एक तारा बोले, सुन सुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन बात है लंबी मतलब गोल, खोल न दे ये सबके पोल तो फिर उसके बाद।
और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक चंदूलाल जयसिंह भाई शाह की आज जयंती है। वो संयोगवश फिल्मों में आए और अपने दौर के सबसे कुशल व्यावसायिक फिल्मकार बनकर सबको चमत्कृत कर दिया। और संयोग से ही सही, लेकिन इस क्षेत्र में आने के बाद चंदूलाल शाह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने ही हॉलीवुड फिल्मों की नकल करके हिंदी फिल्में बनाने का चलन भी शुरू किया था।
और वी ऑल्सो पे ट्रिब्यूट टू केपी सक्सेना, द इंडियन सटायरिस्ट एंड राइटर। ही वॉज एम्प्लॉयड बाय द इंडियन रेलवेज एंड वॉज अ प्रोलिफिक राइटर फॉर मैगजीन्स एंड न्यूज पेपर्स। ही इज नोन फॉर द मूवी writing for movie Lagan, Once Upon a Time in India, for the movie Swadesh, and of course for Jodha Akbar as well.
बिल्कुल। और उनकी ये व्यंग यात्रा शुरू हुई थी पत्रिका मनु से, और उन्हें पद्मश्री तथा राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से भी सम्मानित किया गया। और आज ही हिंदी फिल्मों के कैलेंडर यानी सतीश कौशिक की जयंती है। मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, कॉमेडियन और पटकथा लेखक सतीश कौशिक ने अपने काम से खूब वाहवाही बटोरी है।
भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो, जिंदगी में दो बार खुश हुआ हूं, एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज।
और उन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर चुनना एक बड़ी चुनौती माना था, क्योंकि हरियाणा से वो ताल्लुक रखते हैं और उस समय हिंदी फिल्मों को लेकर इतना कोई क्रेज नहीं था, लेकिन उन्होंने जब बॉलीवुड में पहुंचे तो उन्होंने अपने अभिनय से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, खास करके कॉमेडी में। और श्रोताओं, इसके साथ ही समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो जागृति और अनुजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।